नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 11 श्लोक संख्या है 7। हम 6 और 7 है, 6 में परपट नहीं है तो 7 में श्लोक का उच्चारण करेंगे। 7 में श्लोक बोर्ड पे लिखा गया है। धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरिहि श्रुतं च तद्विधां राजन् येन आचात्मा प्रसीदति। कृपया अनुवाद दोहराइए। परम पुरुष अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के सार, समस्त धर्मों के मूल तथा महापुरुषों की स्मृति हैं। हे राजा युधिष्ठिर, इस धर्म के सिद्धांत को प्रमाण स्वरूप समझना चाहिए। इसी धार्मिक सिद्धांत के आधार पर सबों की तुष्टि होती है, यहाँ तक कि मनुष्य के मन, आत्मा तथा शरीर की भी तुष्टि होती है। तात्पर्य, जैसा कि यमराज ने कहा है, धर्मः तु साक्षात् भगवत प्रणीतम्। मृत्यु के बाद प्रत्येक जीव की देखभाल करने वाले भगवान का प्रतिनिधि यमराज हैं, जो इसका निर्णय करता है कि जीव कब और कैसे अपना शरीर बदलेगा। वह अधिकारी है और उसका कहना है कि धर्म तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों तथा आचार संहिताओं से बना है, कोई धर्म का निर्माण नहीं कर सकता। अतएव वैदिक सिद्धांतों के अनुयायी कृत्रिम धार्मिक पद्धतियों को अस्वीकार कर देते हैं। भगवद गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो। वैदिक ज्ञान का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को समझना। अतएव हम चाहे वेदों की बात करें या शास्त्रों की, चाहे धर्म की बात करें या मनुष्य के वृत्ति परक कर्तव्यों के सिद्धांतों की, इन सब का एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण को समझना होना चाहिए। अतएव श्रीमद् भागवतम का यह निष्कर्ष है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यथा भक्तिर अधोक्षदे अहेतुक अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। दूसरे शब्दों में धार्मिक नियमों का लक्ष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करना सीखना है। यह सेवा अहेतुक होनी चाहिए तथा भौतिक स्थितियों के रोके जाने पर भी रुकनी नहीं चाहिए, तब मानव समाज सभी प्रकार से सुखी हो सकेगा। स्मृतियां वैदिक ज्ञान के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले शास्त्र हैं, जिन्हें वैदिक सिद्धांतों का प्रमाण माना जाता है। धर्म का पालन करने के लिए 20 प्रकार की भिन्न भिन्न स्मृतियां हैं, जिनमें से मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियां सर्वव्यापक हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन सम्यक संकल्पजह कामो धर्म मूलादि मृतम स्मृतम। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रुतियां वेदों तथा स्मृतियों से मानवीय आचरण सीखे। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रिक विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। आशय यह है कि भक्त बनने के लिए मनुष्य को श्रुति और स्मृति में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे पुराणों तथा पांच रात्र की विधि के नियमों को मानना चाहिए। श्रुति तथा स्मृति का पालन किए बिना न तो कोई शुद्ध भक्त बन सकता है और न ही अन्ना भक्ति से रहित श्रुति तथा स्मृति से कोई जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अतएव सभी प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भक्ति के बिना धार्मिक सिद्धांत का प्रश्न ही नहीं उठता। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में ईश्वर केंद्र बिंदु रहता है। इस समय विश्व भर में धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह भक्ति भावना से प्रायः रहित है, अतएव श्रीमद् भागवतम के निर्णय के अनुसार वह निंदनीय है। भक्ति के बिना तथा कथित धार्मिक सिद्धांत मात्र प्रवंचना है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस सुबह के भागवत कक्षा में। और ये जो प्रसंग चल रहा है, जो प्रतिदिन आते हैं उनको तो मालूम है, बस थोड़ा सा कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश कर रहे हैं और ये इसकी शुरुआत हुई थी छठवें स्कंद में, जब ये उनसे प्रश्न किया गया था कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं, तो वहाँ से उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रसंग कंटिन्यूसली आ रहा है, उसी में जो है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज का प्रसंग भी, और फिर अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अब नारद जी जो है धर्म के सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या धार्मिक सिद्धांत का भक्ति से कोई मतलब है, या इसका भक्ति से कोई लेना देना है, या कोई केवल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, या केवल भक्ति करने से या नाम जप करने से धार्मिक सिद्धांत अपने आप हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। तो कुछ बिंदु हैं जिस पर प्रयास करेंगे कि कुछ बताने का। तो पहले सबसे पहले सभी वरिष्ठ वैष्णवों के में कृपा याचना करते हुए, तो जो धार्मिक सिद्धांत हैं, जैसा कि प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि ये जो धार्मिक सिद्धांत हैं भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं। भगवान ने ही इस धार्मिक सिद्धांत को दिया है वेदों और पुराणों और स्मृति शास्त्रों के माध्यम से। परंतु हम देखते हैं कि कई बार हम भक्ति में आने के बाद भक्तों के समाज में कई बार, और जैसा कि लिखा भी है, ऐसा नहीं कि शास्त्रों में लिखा नहीं है कि अगर हम केवल जप करते हैं तो हमारे अंदर ये सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु और फिर कई बार जो दूसरे हम देखते हैं सनातन धर्म में ही, जो दूसरे लोग हैं या सनातन धर्म को ही फॉलो करते हैं, पर वो केवल इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इन सिद्धांतों का पालन जरूरी है, किसी का बुरा नहीं करना, इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने, जप करने से क्या होगा। तो बड़ा अजीब सा होता है कई बार, वो उनको लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जप इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें लगता है जप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट क्या है कि दोनों का ही अपना अपना महत्व है और दोनों में एक्चुअल में अन्योन्याश्रय संबंध है। अन्योन्याश्रय संबंध का मतलब होता है एक के बिना दूसरे का एग्जिस्ट नहीं है, अर्थात एक चीज दूसरे चीज के ऊपर निर्भर है। आप कहोगे इसका मतलब भक्ति किसी के ऊपर निर्भर हो गई, नाम जब किसी के ऊपर निर्भर हो गया, नहीं। ये प्रभुपाद लिखते हैं इस परपट में, इसको प्रमाण स्वरूप समझना चाहिए कि अगर कोई भक्ति कर रहा है, प्रमाण स्वरूप समझने का मतलब है कि अगर कोई भक्ति कर रहा है और बहुत अच्छी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है तो उसके अंदर ये सारे गुण प्रकट होंगे। परंतु अगर ये सारे गुण प्रकट नहीं हो रहे और इसमें से कुछ गुण भी प्रकट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब वो भक्ति ठीक से नहीं कर रहा है और उसकी भक्ति में खोट है या कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्योंकि हम कई बार जो है हम ये प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं और नाम जप कर रहा हूँ मैं तो ये सब कुछ हो गया, इतनी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर हम ध्यान देते नहीं हैं। हम प्रभुपाद के मूवमेंट में देखते हैं, प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल थे, हजारों हजारों डिसाइपल को प्रभुपाद ने इनिशिएट किया, और बहुत सारे जो प्रभुपाद डिसाइपल्स थे बाद में वो इस मूवमेंट को छोड़ के चले गए या छोड़ दिया उन्होंने या छूट गया, एनीथिंग कुछ भी क्या बोल सकते हैं हम। तो एक डिवोटी बता रहे थे मायापुर में कि इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई उनकी सेवा में कोई कमी थी या उनके जप में कुछ कमी था, क्योंकि बड़ी बड़ी सेवाएं करी उन्होंने, परंतु उन्होंने छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उसको ओवरलुक कर दिया उस बड़ी चीज़ों के उसमें। तो धीरे धीरे क्या है कि ये इतना फैल इतनी इस तरह से व्यक्ति धीरे धीरे फिर क्या होता है, अंदर से उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर जो धार्मिक सिद्धांतों को समझ, धार्मिक सिद्धांतों को धारण करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति छीन हो जाती है। वो शक्ति आती है भक्ति से, नाम जप करने से। अगर हम नाम जप करते हैं तो हमें नाम जप इतना योग्य बना देता है कि इन धार्मिक सिद्धांतों को हम धारण कर सकें। प्रभुपाद लिखते हैं कि धार्मिक सिद्धांत को जो है धारण किए बिना इसमें कोई शुद्ध भक्त बन ही नहीं सकता। और यही बात रूप गोस्वामी भी नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखते हैं। मान लीजिए हम इसको साधारण भाषा में अगर समझें कि कोई भक्त जप भी करता है, बहुत अच्छा जप करता है, सब कुछ कर रहा है, बट साथ में बहुत कुछ और भी करता है जो कि धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, तो क्या है कि एक दिन वो इस तरह के जो चीजें हैं उसको अंदर से खोखला बना देगी और उसका नाम जप भी छूट जाएगा, भक्ति भी छूट जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, कि इसको तभी प्रभुपाद लिखते हैं इसको प्रमाण के रूप में समझना चाहिए कि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसके अंदर ये होगा। अगर ये जो धार्मिक सिद्धांत हैं, धीरे धीरे धार्मिक सिद्धांत का जैसे कि जो कल लेक्चर लेंगे जो भी, उसमें ये धार्मिक सिद्धांतों का नारद जी ने वर्णन किया है, पर कुछ जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, प्रयास करेंगे कुछ अगर कुछ चीज़ें समझ पाते हैं तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि ये जो धार्मिक सिद्धांत है ये भगवान द्वारा ही दिए गए हैं, इसीलिए इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कि हम भक्ति कर रहे थे इसका मतलब ये हमारे लिए है ही नहीं। श्री श्री राधा राधिका नंद भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री गौर निताय जी की। तो अब जैसे कि महाराज आत्मनिवेदन महाराज परसों क्लास में बता रहे थे, बहुत सुंदर क्लास दिया था महाराज ने, बहुत सुंदर क्लास था, कि रिलीजियस प्रिंसिपल है क्या। प्रभुपाद लिखते हैं कि सनातन धर्म, उसमें नारद जी बोलते हैं मैं आपको सनातन धर्म बताऊंगा, तो सनातन धर्म है क्या। तो प्रभुपाद अपने सनातन धर्म के व्याख्या में लिखते हैं कि सनातन धर्म का मतलब जो जीव का भगवान से साथ संबंध विच्छेद हो गया है या भूल गया है वो, तो उस लॉस्ट रिलेशनशिप को दोबारा से स्थापित करना, ये सनातन धर्म की व्याख्या प्रभुपाद ने करी है। तो क्या है कि उस रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए जो है ये धार्मिक सिद्धांत बहुत जरूरी है। सनातन धर्म को भगवान के साथ, ये जो सनातन धर्म है उसमें जो है जीव और आत्मा का जब भगवान के को लॉस्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए इन धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जो सारे वैदिक, इसमें तीन चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कह रहे कि सभी धर्मों का मूल क्या है, भगवान को समझना। सभी वैदिक सिद्धांतों का मूल क्या है, भगवान को समझना। सभी स्मृति शास्त्र का मूल क्या है, भगवान को समझना। और वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है, भगवान को समझना। धार्मिक कर्तव्य का क्या उद्देश्य है, भगवान को समझना। परंतु अगर कोई धार्मिक भगवान को कोई समझ रहा है, भगवान को समझ करके अगर कोई माला कर रहा है तो इसका मतलब सब कुछ कर रहा है, फिर अलग से धार्मिक सिद्धांत की चर्चा क्यों। इसका उद्देश्य क्या है, भगवान को समझना। इसमें शास्त्र में कहा गया है कि चारों वेद, छहों शास्त्र, 18 पुराण, ज्ञान, सत्संग, इन सब का उद्देश्य क्या है, भगवान के नाम का जप करना। भगवान के नाम का जप करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के प्रेमा भक्ति को सीखना। और कोई भक्त अगर नाम जप कर रहा है और ये चीजें सीख रहा है तो उसको इन चीज सब चीजें उसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु ध्यान रखने की अवश्य है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि नाम जप करते हुए, नाम जप भगवान की भक्ति करते हुए इस एक साधक को हर वस्तु का ख्याल रखना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं इसमें कि केवल धार्मिक सिद्धांत जो है वो केवल ठगी है, प्रवंचना है। लास्ट लाइन में लिखते हैं कि केवल कोई धार्मिक सिद्धांत का फॉलो करेगा और भक्ति नहीं करता, इसका मतलब क्या है, वो ठगपना है, मतलब ठगता है किसी को। बट कह रहा है कि कोई भगवान की भक्ति करता है और धार्मिक सिद्धांतों को धारण नहीं करता तो वो भी कभी अपने जीवन के उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा, उसके वो अपने जीवन के उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोनों का एक दूसरे से संबंध है। तो प्रभुपाद लिखते हैं दसवें स्कंद के 24वें अध्याय के 11वें श्लोक के परपट में लिखते हैं, इफ एनी वन गिव्स अप रिलीजियस प्रिंसिपल्स फेल्स टू अचीव गुड फॉर्च्यून, कि वो जो है अपने मतलब सौभाग्य को खो देता है अगर वो रिलीजियस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता था। तो अब फिर इस एक लाइन में लिखा है कि इससे मन की, आत्मा की और शरीर की सबकी तुष्टि होती है। तो हम देखते हैं कि जब हम इस उद्देश्य इसको इनका पालन करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये व्यक्ति की वो मन से भी व्यक्ति किसी के प्रति कोई अपराध नहीं करता या किसी इस अपराधों से या पाप करने की प्रवृत्ति से बचता है। फिर जो है इसमें हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है अगर हम ये भक्त जप करने के साथ साथ इन धार्मिक सिद्धांतों को का पालन करते हैं तो। परंतु अगर हम इसकी अवहेलना करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ये असंभव है। जैसे आप कहो कि महामंत्र तो सबसे पावरफुल है प्रभु जी, फिर कर करके सब हो जाएगा। कोई गाड़ी बहुत अच्छी है, BMW है, पर सड़क खराब है या ड्राइवर को चलाना नहीं आता तो क्या होगा, वो दौड़ेगी। जैसे अभी आप देखिए जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है वो उस पर जितनी भी गाड़ियां जाती हैं वो मोस्टली गाड़ियों के टायर फट जाते हैं क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल अलग जो है वो विदेशों के स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हुआ है। यहाँ की छोटी गाड़ियां उस पर ज्यादा समय तक वो आप आगरा तक जाते जाते बहुत सी गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। तो प्रतिदिन होता है, ऐसा नहीं एक दिन, प्रतिदिन कुछ ना कुछ गाड़ियों का होता है। इसका क्या मतलब है, ये सेम जैसे मैं कि हमारे पास महामंत्र है, सब कुछ है, बहुत पावरफुल है, बट क्या है कि हम धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं। मान लीजिए मैं जप करता हूं साथ में पीछे से चोरी भी करता हूं, जहां मौका मिला वहीं से चीजें उठा ली, जहां मौका मिला वहीं से कुछ कर लिया। आप समझ रहे हो इसका क्या, इसका मतलब है कि हम धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना कर रहे हैं। मैं जप तो कर ही रहा हूं ना, क्या हो गया। तो क्या है कि आप बिल्कुल गलत चीजें कर रहे हो साथ में, तो क्या है कि वो काम नहीं करेगा। फिर वो एक पुण्य वर्ग, यही जप जो है एक पुण्य वर्ग जो है पुण्य बनकर रह जाएगा। हमारी जो हम जो प्राप्त करना चाहते हैं इस जप के माध्यम से वो चीज प्राप्त नहीं हो पाएगी। जैसे इस पूरे भौतिक जगत में कोई स्थान ऐसा नहीं है, कोई संस्था ऐसी नहीं है, कोई जगह ऐसा नहीं है जहां प्रलोभन नहीं है और परेशानी नहीं है। हर जगह स्थिति में प्रलोभन है, हर जगह परेशानी है। धर्म के पालन करने में कष्ट होता ही है। अगर हम धर्म का पालन करना चाहते हैं तो हमें कष्टों से गुजरना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते, जैसे एक धार्मिक नियम है, सिद्धांत है कि प्रतिदिन 2 बार स्नान करना चाहिए। अब सर्दियों में 1 बार स्नान करने में जान निकलती है, अब 2 बार स्नान करना चाहिए। परंतु अगर हमें इस धार्मिक सिद्धांत को फॉलो करना है तो फिर हमारे लिए बाधा नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि जबरदस्ती करके भी नहीं करना और कोई मुश्किलें आती हैं उससे छोड़ना भी नहीं है। जैसे कि आप विवेकानंद महाराज बता रहे थे परसों के लेक्चर में कि आप या कल शायद महाराज कि फोर्सली आप किसी को जो है किसी सेवा में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये वॉलंटरली अगर वो करेगा तो फिर धीरे धीरे उसकी उन्नति, वो तो फिर उसके लिए काम हो जाएगा, जबरदस्ती वो सेवा नहीं होगी। तो इसी तरह से है कि हम जो है उसको जबरदस्ती पालन नहीं कर सकते, परंतु कोई भक्त है और उसके लिए रूल है, धार्मिक नियम ऐसा है, तो वो क्योंकि इससे बहुत इनकन्वीनियंस होता है, हमारी असुविधा होती है, तो इसीलिए हम इसका फॉलो नहीं करेंगे, ये भी गलत है। क्योंकि धर्म के पालन में निश्चित रूप से कष्ट होता है। तो हमें कष्ट देखकर इस धर्म के नियम सिद्धांत को छोड़ना नहीं चाहिए। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम किस आश्रम में रहते हैं, परंतु इससे बहुत फर्क पड़ता है कि हम भक्ति कितनी गंभीरता से करते हैं कि नहीं करते हैं किसी भी आश्रम में रह करके, और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं नहीं रह करते हैं उसी किसी भी आश्रम में रह करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जब भगवान भगवद गीता के 3rd अध्याय के 35वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रेयां स्वधर्मो विघ्नः स्वधर्मा सुनिष्ठता स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, आपको पता है भगवद गीता में यह भी एक श्लोक है जिसको भगवान ने दोबारा रिपीट किया है, 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में दोबारा इसको बोला है भगवान ने। दो ही श्लोक है भगवद गीता में जिसको दो बार रिपीट किया गया है, और यह भी एक श्लोक है इसमें 3:35 और 18:47, ये दूसरी बार भगवान ने इसको रिपीट किया है कि व्यक्ति को अपना स्वाभाविक धर्म जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। लाइन सेम है, दूसरे लाइन में थोड़ी अलग 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 है, बट बाकी जो है बिल्कुल सेम है, अर्थ ऑलमोस्ट सेम है। तो उस कहने का मतलब है कि जो रिलीजियस प्रिंसिपल है उसको, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम छोटे छोटे धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकते हैं तो हम बड़े सिद्धांतों से पालन करने की अपेक्षा आपसे कैसे की जाएगी, ये किसी से कैसे की जा सकती है कि अगर वो छोटे छोटे धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकता। मान लीजिए एक धार्मिक सिद्धांत है कि सुबह जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, और कोई व्यक्ति नहीं उठता है तो हम उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो व्यक्ति बाकी चीजें करेगा। कई बार हम कहते हैं कि बहुत, आप जब भी देखो कृष्णा कॉन्शियस में, जो मैंने जो देखा है कई बार कि ज्यादातर जो भक्त हैं या किसी आश्रम में हैं या कहीं बाहर रहते हैं, अगर वो अपनी साधना को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं या उनको सुबह उठने की आदत नहीं है या मॉर्निंग प्रोग्राम को मिस करते हैं तो धीरे धीरे जो है उनकी भक्ति में वो खिंचाव आने लगता है और भक्ति, आप समझ लीजिए, वो आश्रम को या उस जगह को उसको छोड़ना पड़ता है। इसीलिए मॉर्निंग साधना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक धार्मिक नियम है। ये नहीं कहा गया कि आप रात को बहुत देर तक बैठ कर काम करिए, कि आप रात को 2 बजे तक लगे हुए थे प्रभु जी, इसलिए कोई बहाना नहीं है। प्रभु जी, कई लोग यहाँ एग्जाम्पल हैं जो रात के 2 बजे भी आकर के सुबह मंगल आरती में खड़े होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करना। तो हम, क्योंकि हम जिस भी आश्रम में हैं उस आश्रम के गुण और धर्म, खास करके धर्म और कर्तव्यों का अगर हम पालन करते हैं तो तभी हमें सही अनुभूति होती है कि इस आश्रम में इतनी मुश्किल है या इतना अच्छा है या इतनी समस्याएं हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बिना धार्मिक नियम के, हम इतने सालों से, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत जप कर रहा है कई सालों से, आपको भी मिलते होंगे मंदिर में भी, कई लोग विजिट करते हैं, बहुत पुराने लोग होते हैं, बहुत सालों से दीक्षा हो गई जप कर रहे हैं, क्या खुश हैं वो? जब भी मिलेंगे कोई शिकायत करेंगे, जब भी मिलेंगे कोई शिकायत करेंगे, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है प्रभु जी, यहाँ तो सब अपना अपना। अब देख रहे हो क्या मतलब क्या है उसका, कि सारा जीवन उसने कभी चीज को फॉलो ठीक से किया नहीं। तो क्या है कि 15-20 साल से घुमा रहा है और यहां जब भी आता है तब भी वही शिकायतें करता है भक्तों की, संस्था की शिकायत करेगा, भक्तों की शिकायत करेगा। क्यों? क्योंकि वो माला तो किसी तरह से फेर लेता है, बट क्या है कि भक्त धार्मिक सिद्धांतों से उसको कभी उसने मेल कराया नहीं। किसके साथ यह भी बहुत जरूरी है, निंदा चुगली नहीं करना, यह भी एक धार्मिक सिद्धांत है कि न निंदा करना न चुगली करना है, न ब्लेम करना है। तो हम जब जैसे ही इन सिद्धांतों को छोड़ते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि हम केवल जब से सब हो जाएगा, हम परफेक्शन के लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी भूल है। हम किसी गलत चीजों को समझ पा रहे हैं, अरे हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है, हमारी समझ गलत है, या हम अज्ञानता में हैं, या हमारा फेथ कम है कि हम इन चीजों को ठीक से फॉलो नहीं करते, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। सबसे बड़ी बात है कि हर डिवोटी अपना स्टैंडर्ड खुद तय करता है, किसी भी डिवोटी का कोई स्टैंडर्ड तय नहीं कर सकता। नियम सब पढ़ लेते हैं, सब समझते हैं, कथा सबके लिए एक बराबर होती है, बट स्टैंडर्ड हर डिवोटी का अपना स्टैंडर्ड को खुद ही तय करता है कि मेरा क्या स्टैंडर्ड है। जैसे कई लोग पूछते हैं, प्रभु जी जगन्नाथ यात्रा में स्टॉल लगे हम खा लें? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टैंडर्ड है, जो खा रहा है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं खा रहा तब भी कोई बात नहीं, कि दोनों का अपना अपना स्टैंडर्ड है। कोई गोविंदा से भी नहीं खाता, कोई कह रहा है गोविंदा से खाने में कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो रोज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खाओ। मतलब कहने का मतलब, हर व्यक्ति का भक्ति का आपका खुद का स्टैंडर्ड है, आप खुद ही तय करोगे कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है। आपका स्टैंडर्ड मैं नहीं तय करूंगा और मेरा स्टैंडर्ड आप नहीं तय करेंगे। तो आपको देखना है कि आप इस धार्मिक सिद्धांतों के हिसाब से आप किस तरह की भक्ति का स्टैंडर्ड को तय कर मतलब जो है उसको स्टैंडर्ड को लागू करते हो अपने जीवन में। हम जब भी देखते हैं कि हर व्यक्ति केवल अपने बॉडी माइंड की नीड पूरी करता है, इंक्लूडिंग मैं बाहर नहीं उन चीज़ों से, हर व्यक्ति हर समय केवल इसी चिंता में रहते हैं कि शरीर को सुख मिलना चाहिए, मन को अच्छा लगना चाहिए। मन को अच्छा नहीं लगा या शरीर को सुख नहीं मिल रहा तो हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं। शरीर को भी सुख मिल रहा है पर मन को अच्छा नहीं लग रहा है तो हम छोड़ देते हैं, या मन को अच्छा लग रहा है शरीर को मैं कष्ट पहुंच रहा है तब भी हम छोड़ देते हैं। धीरे धीरे इसी धार्मिक सिद्धांत को छोड़ने की वजह से कई बार हम अपना काम, जैसे प्रभु जी बताते हैं अपने लेक्चर में, अपना काम निकालने वाले भक्त बन जाते हैं, जुगाड़ू भक्त। जुगाड़ करो, निकल जाओ यहां से। तो मैंने एक बार एक डिवोटी से बात कर रहा था तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा ये भी करते हैं ये भी इसी तरह से भगवान उनको भी पूरा कर रहे हैं भाई, इनका उद्देश्य इतना अच्छा नहीं है और दूसरे व्यक्ति है उसका उद्देश्य। उन्होंने कहा इस्कॉन इज डिजायर ट्री है, रियल में जो जैसे आता है उसकी वैसे डिजायर भगवान पूरी कर देते हैं। अच्छा इसलिए आया था, चल ग्रांट वो मिल गया तेरे को। तो हर तरह के संस्था में भी चार तरह के लोग आते हैं, खाली भगवान के पास भक्त नहीं आते, चार तरह के संस्थाओं में भी ऐसे चार तरह के लोग आते हैं। सबका अलग अलग उद्देश्य है संस्था में रहने का भी, ऐसा नहीं कि जो मठ में रहता है सबका उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना है, नहीं। कोई पैसा कमाने के लिए भी बैठा हुआ है, कोई डांस करने के लिए भी बैठा हुआ है, कोई देखने के लिए बैठा है, कोई जीवन यापन के लिए भी बैठा हुआ है, कोई बहुत गंभीर से भक्ति करने के लिए भी है। आपको तय करना है आपको किसके साथ जाना है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं और हर तरह की चीजें हैं। ऐसा नहीं कि क्योंकि ये संस्था या कोई भी चीज जो मठ है वो भी भौतिक जगत में स्थापित है, तो भौतिक जगत की जो चीजें हैं वो यहां पर भी है, क्योंकि आदमी कहां से आता है, उसी संसार से, उसी जगह से हम आते हैं और उन्हीं कंटेमिनेशन से हम आते हैं, वो कंटेमिनेशन हमारे अंदर भी है। जब हम संस्था में रहते हैं तो वही कंटेमिनेशन हम फैलाते भी हैं, तो इसके लिए संस्था जिम्मेवार नहीं है। प्रभु जी भक्त ऐसा करके चला गया तो उसके लिए क्या संस्था जिम्मेवार है, नहीं, आप खुद जिम्मेवार हो, क्योंकि आपका उद्देश्य कुछ और था। इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रभुपाद लिखते हैं कि हम अगर भक्ति करते हुए इन धार्मिक सिद्धांतों की उपेक्षा करेंगे तो हम कभी भक्ति का जो फल है, जो एक्चुअल में भक्ति का लाभ है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, असंभव है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि हम किसी उद्देश्य से आए हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे बिहेवियर से ज्यादा लेसन लेता है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं दूसरों के प्रति, हमारा चरित्र कैसा है, हम कैसे डीलिंग्स करते हैं दूसरे भक्तों से, हम समस्याओं को से कैसे निपटते हैं, हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए किस तरह की चीजें करते हैं, तो और कैसे हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं। तो आप हमारे इन गुणों को देख करके, हमारे इन डीलिंग्स को देख करके दूसरे भक्त सीखते हैं या दूसरे भक्त इसको अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। परंतु अगर हम केवल जप करते हैं और ये सब चीजें नहीं करते, इन धार्मिक सिद्धांतों को बिल्कुल उपेक्षा करते हैं और फॉलो ही नहीं करते, तो निश्चित रूप से आप भक्त के उस लेवल पे नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छा भक्त कहा जा सके। जो जैसे हम एक रूल है कि एकांत की भक्ति जो है उत्पात मचाती है, हम सब ने खूब सुना है, पर एकांत की, जबकि एक नियम यह भी है कि भक्तों को एकांत में वास करना चाहिए। अब हो गया ना दोनों कंट्राडिक्शन, एकांत की भक्ति उत्पात मचाती है और एक भक्तों को एकांत में वास करना चाहिए, कई जगह लिखा है धार्मिक सिद्धांत, इवन 16वें अध्याय में भगवान जब गुणों का वर्णन करते हैं वहां भी लिखा है, कई और जगह भी लिखा होगा, तो फिर क्या मतलब है। तो ये रूप गोस्वामी इसको क्लियर करते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रिक विधि बिना, कि इन चीज श्रुति में जो चीजें दी, सिद्धांत दिए गए हैं, स्मृति में जो सिद्धांत दिए गए हैं, और श्रुति का मतलब वेद शास्त्र, स्मृति का मतलब स्मृति शास्त्र लिखे गए हैं, बहुत 20 तरह के स्मृति शास्त्र हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, जिसमें प्रभुपाद इसमें दो स्मृति की चर्चा भी करते हैं, मनुस्मृति की और याज्ञवल्क्य स्मृति की। याज्ञवल्क्य स्मृति उसमें से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे देश में जो कानून बना हुआ है हिंदू कानून, इसी याज्ञवल्क्य स्मृति के पर एक टीका लिखी हुई है, मिताक्षरा टीका, उसी के आधार पर एक हिंदू कानून बना हुआ है। तो अब उन चीजों में तो श्रुति स्मृति पुराण, और पुराण में भी पुराण में जो सिद्धांत है भक्ति वेदों को सपोर्ट करते हैं पुराण, तो पुराण में जो करें इसके बिना अगर कोई एकांत की भक्ति करेगा, रूप गोस्वामी कह रहे हैं इनमें दिए गए धार्मिक सिद्धांतों की उपेक्षा करके अगर कोई एकांत की भक्ति की और एकांत में भक्ति करने का प्रयास करेगा तो फिर वो भक्ति क्या है उत्पात मचाएगी। ऐसे नहीं कि आपको एकांत में भक्ति कर, जबकि रिकमेंडेशन दे रहा है कि एकांत में भक्ति करनी चाहिए, पर कहें इसके बिना श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रिक विधि बिना, इन विधियों को छोड़ करके, पांच रात्रिक विधि का मतलब साथ में आप ड्यूटी रखिए, आप अकेले में तो वर्शिप करिए ड्यूटी का और नाम जप करिए और इन धार्मिक सिद्धांतों को फॉलो करिए, अगर ये नहीं करते हैं तब कहें कि एकांत की भक्ति जो है उत्पात मचाती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे प्रभुपाद इसमें परपट में एक जगह लिखते हैं कि श्रुति स्मृति के पालन किए बिना कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। श्रुति स्मृति के आप समझे कितना इंपॉर्टेंट है, श्रुति मतलब वेदों के और स्मृति मतलब स्मृति शास्त्र के पुराणों के जो सिद्धांत हैं उसको पालन किए बिना कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु केवल हरि नाम को छोड़कर भक्ति छोड़ करके और केवल श्रुति ये स्मृति पुराण के नियमों को पालन करके कोई अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता या उसके अंदर वो इतनी योग्यता नहीं आएगी कि वो धार्मिक सिद्धांतों को धारण कर पाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक कोई भक्त नहीं है इन धार्मिक सिद्धांतों को धारण ही नहीं कर सकता। चीटिंग लिखा हुआ कि ठगी है, मतलब धारण नहीं कर सकता व्यक्ति उसको। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि आजकल के समय में जो धर्म के नाम पर क्या है कुछ एक्टिविटी हो रही है इसमें भक्ति का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, भक्ति के बिना सारी एक्टिविटी कर रहे हैं लोग। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि मनुस्मृति के अनुसार से मनु महाराज ने जो है वो धर्म के कुछ सिद्धांत बताए हैं, हालांकि इसमें नारद जी बता रहे हैं इसमें नेक्स्ट श्लोकों में 30 धार्मिक सिद्धांतों का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि व्यक्ति को उसमें, पर मनुस्मृति में इसमें काफी कुछ मिलते जुलते हैं, कुछ जो है ये धर्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। द्वितीय क्षमा दमस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, कि ये धर्म के मेन जो है सिद्धांत हैं जिनको निश्चित रूप से हर डिवोटी को या हर साधक को पालन करना चाहिए। धृति का मतलब होता है धारण करना या धैर्य रखना, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें बहुत धैर्यपूर्वक भक्ति करते रहना चाहिए और नियमों का पालन करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ समय भी जाता है, कुछ साल भी जाते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं, हमें लगता है कुछ फल इसका कुछ निकल तो नहीं रहा है। नहीं, जरूर निकलेगा, पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। फिर है क्षमा कर देना, हमें हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को तो निश्चित रूप से ओवरलुक करना चाहिए, बेशक आप समझा सकते हैं बता दीजिए एंड आगे बढ़ जाइए। फिर है दमस, अपने इंद्रियों को दमन करने का प्रयास करना चाहिए, हर समय जो है इस प्रयास करना चाहिए कि अपने इंद्रियों को दमन करें। अस्तेयम मतलब चोरी ना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। कई बार हमें लगता है कि हम चोरी तो करते नहीं, क्योंकि मैं अब इसके बारे में सोच रहा था कल इस लेक्चर तैयार करते हुए, तो मुझे लगा चोरी का क्या मतलब है, ऐसे चोरी तो करते नहीं। तो मुझे फिर मैंने ध्यान दिया कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोई चीज़ पड़ी है मंदिर की, मान लीजिए कोई ऑफरिंग आई या मिठाई का डब्बा आया, आप लोग बुरा मत मान लीजिएगा, मेरा अपना थोड़ा अनुभव हुआ था। और मिठाई के डब्बे पर जो है कमांडर ऑफिस का अधिकार है, क्योंकि वही हैंडल करता है, मैं उठा के ले गया, आपके सामने ले गया, इनके सामने बट तब भी चोरी कहलाएगी, क्योंकि प्रॉपर व्यक्ति के सामने या प्रॉपर व्यक्ति से पूछ के नहीं लिया गया। आप समझ गए बात को, क्या है कि मैंने आपके सामने उठा ली, इनके सामने उठा ली, उन दोनों के सामने नहीं उठाई जो एक्चुअल हकदार हैं उसके, उनसे बिना पूछे ले लिया, क्योंकि एक्चुअल वो व्यक्ति उसका हकदार है, वो व्यक्ति निर्णय कर सकता है ठीक है आप ले जाओ, पर मैंने उठा लिया था, वो जो है वो भी एक चोरी, खीरे का चोर या हीरे का चोर। हालांकि मनुस्मृति में जो है इन चोरों में डिफरेंस बताया गया है कि ऐसा नहीं कि खीरे के चोर को हीरे के चोर बराबर वो जो है सजा मिलेगी, क्योंकि जो सजा होती है वो की चीजों की वैल्यू के हिसाब से दी जाती है। हाँ ये भी धार्मिक सिद्धांत है कि इस चीजों की वैल्यू के हिसाब से उसकी सजा होती है, कि ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने कुछ छोटे मोटी चीज उठा ली और किसी व्यक्ति ने वहीं से कोई बड़ी चीज उठा ली तो दोनों को बराबर सजा मिलेगी। ये कम से कम धार्मिक शास्त्र जो है इसको कभी सपोर्ट नहीं करते। परंतु मुझे लगा कि निश्चित रूप से यही है, मान लीजिए आश्रम में कुछ पड़ा है, मुझे पता आश्रम का मैनेजर एक व्यक्ति है और मुझे पता है इस किसी के यूज का नहीं है, भैया आश्रम में फेंक देंगे, और मैंने उठा लिया और मैंने उस व्यक्ति को इन्फॉर्म नहीं किया, पूछा नहीं, ले नहीं लिया, मुझे लगता है मुझे लगा, पता नहीं मैं कितना ठीक हूं, कि मुझे लगा ये भी एक तरह से चोरी है क्योंकि उस पर प्रॉपर व्यक्ति से नहीं पूछा गया उसके बारे में। तो भक्ति में कितना सावधान रहने की आवश्यकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत सावधान बरतने की आवश्यकता है। अस्तेयम, फिर उसमें क्या है, शौचम। शौचम का मतलब होता है पवित्र रहना, अंदर से और बाहर से भी। तो अंदर से हम पवित्र होने का प्रयास कर ही रहे हैं और बाहर से भी करते हैं, तो हम ध्यान रख सकते हैं भक्ति में आने के बाद। जैसे प्रभुपाद ही बताते हैं कि कम से कम दो बार स्नान व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। फिर इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह के लिए सही, इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है संयमित करना, ये संयमित रखना। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में। धीर का मतलब होता है बुद्धि, अपने बुद्धि को विकसित करना। तो कैसे बुद्धि विकसित करेंगे, शास्त्रों को पढ़ के, सत्संग करके, भक्तों से सुन के जो है। फिर विद्या, अध्यात्म विद्या को विद्या का मतलब यहाँ है स्वाध्याय करना, इसमें अर्थ बताया गया है कि मतलब स्वाध्याय करना। ये सब धार्मिक सिद्धांत हैं। सत्य बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सत्य बोलने वाला सिद्धांत, क्योंकि विदाउट मतलब बिना किसी लाग लपेट के व्यक्ति एक सेकंड में झूठ बोल देता है। कंठी भी है, चोटी भी है, माला भी लटक रही है बीच में, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, कुछ भी पूछो एक सेकंड में वो ध्यान ही नहीं रहता कि मैं क्या बोल दिया। अब जैसे आप एक एग्जांपल सुनो, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप खुद भी आप नोटिस करोगे तो बहुत सारी चीजें दिखेगी। आप नोट करो कि मैं पढ़ रहा था एक दिन, तो उसमें लिखा था कि छोटी से छोटी बात को भी बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। प्रभु जी मैं अभी एक मिनट में आपको फोन करता हूं, और एक घंटा बीत गया उस व्यक्ति का फोन नहीं आया। बस आप एक सेकंड रुको में आया, अब कैसे संभव है एक सेकंड रुको में आया, इतने बोलने में एक सेकंड हो जाता है। धरल्ले से बोलते हैं, हमें आदत पड़ी हुई है, हम इसका ध्यान रख सकते हैं कि कम से कम इसको अवॉइड करें। कह रहे हैं कि एक एक शब्द जो हमने अपने मुंह से निकाला है उसका रिएक्शन होता है। हम काल से भगवान से, और क्या बोलते हैं ये धार्मिक जो अधिकारी हैं जैसे यमराज लोग, इनसे मजाक नहीं कर सकते। किसी भी तरह से हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम मजाक से भी इस तरह की चीजें बोलें। तो हमें इस अपने एक एक शब्द को बड़े ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए। कि साधक का मतलब है बहुत अपने आप को साध लिया है जिसने, उसका एक शब्द ऐसे नहीं निकलेगा जो बिना मतलब का, तभी वो साधक है। साधक का क्या मतलब, आप अगर अपने आप को व्यक्ति साधता नहीं है, अपने आप को बांध के नहीं रख पाता, अपने वाणी को बांध के नहीं रख पाता है, वो अपने शब्दों को बांध नहीं पाता, अपनी प्रवृत्ति को बांधने में सफल नहीं होता, और जिसको बांधने के लिए प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम सही रूप के सही साधक नहीं है। तो ये धार्मिक सिद्धांतों में ये इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस कैसी चीजों को करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्राह्मण के लिए और दूसरे लोगों के लिए बहुत सारे अलग अलग चीजों के धार्मिक सिद्धांत बताए गए हैं। फिर मैं आपको बताता सत्य, अक्रोध हो मतलब क्रोध नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्रोध से दूर रहें। बहुत इम्पॉसिबल है किसी व्यक्ति के लिए, आसान नहीं होता कि हम क्रोध से दूर रहें, बट आज जितना ज्यादा पॉसिबल हो प्रयास करें कि हमारे अंदर से जो है क्रोध ना हो। करें कि ये 10 धर्म के प्रमुख सिद्धांत है, मनु महाराज कह रहे हैं। और नारद जी हालांकि जो अब कल का लेक्चर है उसमें ये 6, 1, 2, 3, 4, 5 श्लोकों में 30 धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं। तो वो धार्मिक सिद्धांत कह रहे हैं कि इसको जब हम प्रभुपाद बताते हैं, जब हम भक्ति करते हैं और नाम जप करते हैं भगवान का, और धीरे धीरे तो हमारे अंदर यह शक्ति आती है कि हम धार्मिक सिद्धांतों को धारण कर सकें। परंतु केवल हम धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना ना करें कि जो धार्मिक सिद्धांत हमें इसके साथ बहुत जरूरी है उस सिद्धांत को हमें निश्चित रूप से धारण करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन के उद्देश्य को जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि ये धार्मिक सिद्धांत भी भगवान के द्वारा दिए गए हैं, तो हमें इसमें लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं, टू बिकम ए डिवोटी वन मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स लेट डाउन बाय द श्रुति एंड स्मृति। वन मस्ट फॉलो कि इस जो है श्रुति स्मृति में जो धार्मिक सिद्धांत हैं उसको निश्चित रूप से पालन करना चाहिए अगर किसी को जो है वो डिवोटी बनना है या शुद्ध भक्त बनना है। तो कहने का मतलब ये था कि हम धार्मिक भक्ति करते हुए धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकते और केवल धार्मिक सिद्धांत फॉलो करके हम जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे या हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है ऐसी प्रवृत्ति हो आपके पिछले जन्मों की वजह से कि आप एक दो धार्मिक सिद्धांतों को बहुत दृढ़तापूर्वक पालन कर रहे हैं, पर केवल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करें और भक्ति ना करें। क्योंकि सबका उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना है, भगवान के नाम का जप करना, भगवान को समझना। तो अगर वो धार्मिक सिद्धांत का पालन करके ये नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से फिर वो धार्मिक सिद्धांत भी व्यर्थ है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रख के भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की क्वेश्चन, किसी का टिप्पणी? यस जी।
हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई इतने सुंदर लेक्चर के लिए। जी आपसे ने बताया कि जैसे चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं, उसी प्रकार चार प्रकार के लोग जो है संस्था भी आते हैं, लेकिन देखते हैं कहीं की जो है इंटेंशन सही रहती है। शुरू में जो भी आते हैं मंदिर में उनकी ऐसे कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन बाद में देखते हैं धीरे धीरे उनका उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। और इसका उल्टा भी है, कई लोग गलत पर्पज के लिए आते हैं लेकिन बाद में उनका पर्पज ठीक हो जाता है। तो ये कैसे होता है, उसको कैसे करेक्ट किया जाए?
एक्चुअली में क्या है कि कई बार व्यक्ति जो है वो परेशान हो करके और किसी वजह से कई बार मंदिर में आने का एक ये भी कारण होता है, जैसे अर्थ, जैसे कुछ दिन महाराज बता रहे थे कि दो कैटेगरी के लोग ज़्यादा मंदिर में आते हैं। जो चार कैटेगरी है भगवान की, उसमें से दो कैटेगरी के लोग, मोस्टली 90% लोग इन्हीं दो कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें बता रहे थे कि आर्थो जो जो दुखी होके आता है और अर्थार्थी, पहले आर्थ और अर्थार्थी, ये दोनों को कह रहे थे कि ये ज़्यादा दो कैटेगरी के लोग मंदिर में आते हैं। तो जो आप बता रहे हो उसमें कई बार क्या होता है, व्यक्ति दुखी होकर के आता है और उसके अंदर सतोगुण है, पिछले संस्कार हैं, या यहाँ भक्तों को सुना, थोड़ा संग किया, अच्छा मोटिवेशन है, तो अच्छी भक्ति में भी जुड़ जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल भी है हमारे संस्था में भी है कि कई और मोटिव से आए थे बट यहाँ आके बहुत अच्छे भक्त बन गए। तो वो पिछले उनके कर्म आप समझ लीजिए, भगवान उनको खींच के ले आते हैं, जो पिछले जो धार्मिक चीज़ें जो हैं वो उनको पुश कर देती है कि यहाँ रह जाओ। क्योंकि जब मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं जब आया था 2003 में पहली बार, तो मैं इसलिए नहीं आया था कि यहाँ कोई भक्ति वक्ति होती होगी या चाहे कुछ भी होता होगा। मैं सोच के आया था कि मेरा एक दोस्त था, बहुत फोर्स करता था मुझे कि एक बार चल के देख, एक बार चल के देख। तो मैंने कहा ठीक है, जब हो आता है मतलब ज़बरदस्ती, मैंने कहा चलो एक बार घूम आता है, बहुत रोज कहता है इसलिए, तो ऐसे देखने के लिए आया था कि मतलब चलो देख के आते हैं कि होता क्या है। तो वो 63 नंबर में जो मैं वहीं गया था पहली बार, तो क्या है बाद में धीरे धीरे लगा ठीक है, अच्छा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे ही। पर कई लोग क्या है कि माना अच्छे मोटिव से आते हैं कि चलो भगवान की सेवा, फिर वो यहाँ अगर भक्तों का व्यवहार अच्छा नहीं देखते, जो है वही बता रहा था आपको कि धार्मिक सिद्धांतों को देखते हैं कि भक्त माला कर रहे हैं, ये मंदिर में रहते हैं, ये मठ में रहते हैं, ये भी ऐसे करते हैं, तो उनका ना हृदय टूट जाता है। क्योंकि वो आते हैं कि यहाँ जो होगा वो फरिश्ता होगा सब, क्योंकि उनको पता नहीं ये भी एक हॉस्पिटल है, यहाँ भी इलाज चल रहा है, तो वो ये समझ के आते हैं सब फरिश्ते होंगे, यहाँ पर एकदम परफेक्ट सब कुछ होगा। उस जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं जो कि रमेश नगर में रहते हैं, वो पति पत्नी, यहाँ मैंने एक बार कई बार सुना भी चुका हूँ, वो यहाँ पर आते हैं, अब थोड़ा कम हो गया, पहले अक्सर आते थे। तो एक दिन मुझे वो बाहर मिले ऐसे, तो मुझे बोला कि आपके यहाँ भी बहुत पक्षपात होता है, मुझे बोला मतलब आपके यहाँ मतलब इस्कॉन में बहुत पक्षपात होता है। पता नहीं मैं पता नहीं कैसे मूड में था, मैंने बोला क्यों आपको प्रसाद कम मिल गया क्या? मतलब तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी वो बात नहीं कर रहा हूँ,
मैंने कहा बताओ ना हुआ क्या, मैं थोड़ा सा इंटीमेसी से बात किया, मैंने बता ना क्या हुआ क्या। नहीं मैंने देखा वो बात वही निकली, वो जो बांट रहे थे ना प्रसाद प्रभु, वो ना वो देखा एकदम से डाल दिया। और हमने बोला कि थोड़ा और जा दो, कह रहे नहीं नहीं है नहीं है नहीं। तुम मैंने उनको कहा कि मैंने उनको कहा ठीक है मैं अथॉरिटी से कभी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वहां पर खड़े कर दे, ठीक है, तो आप निष्पक्ष करके दिखाना, मैं आपकी पत्नी खड़ी होगी तो फिर आप दिखाना उतनी ही टेढ़ा करना जितने आपने दूसरों में टेढ़े किए। तो क्या है कि हम कुछ कर नहीं सकते, आप समझ रहे, आप उसने सोचा यहां भी ऐसे होता है। अब वो चीजें देखने कुछ और आते हैं भाई, आप मंदिर में आपसे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, अच्छा यहां भी ऐसे होता है भाई, यहां भी होता है क्या मतलब, हर जगह अच्छे और बुरे हर जगह है, हर जगह इस तरह के लोग हैं, पार्सल ये खत्म हो जाएगी फिर तो पता नहीं बहुत बड़ी बड़ी बात है ये। तो कहने का मतलब कि हर व्यक्ति का ऐसा उद्देश्य है, कई बार उनको लोगों को झटका लगता है हमारे व्यवहार से हमारी चीजों से, मालूम मैं माला भी कर रहा हूँ साथ में कर रहा हूँ, हाँ प्रभु जी ठीक है हरे कृष्ण कृष्ण, अब वो देखेगा कभी माला भी कर रहा साथ में बात भी कर रहा है तो उसको धक्का तो लगेगा ही, मैंने सुना ही नहीं था कभी। जैसे एक मेरे और जानने वाले वो करते हो लोग चप्पल पहन के भी जप करते हैं क्या, मैंने कहा मतलब कह रहे वो आप लोग घूमते भी हो और जप भी करते रहो। तो मैंने फिर इसको समझाया, मैंने कहा वैदिक मंत्रों को चप्पल पहन के नहीं किया जाता है, नाम जप कैसे भी कर सकते हैं। मैंने कहा वैसे तो रूल यही है कि हम बैठ के करें, एक आसन पर करें, इस तरह से करें, पर ना करने से अच्छा है कि घूम करके करें, उससे भी ना से अच्छे करना है चलते हुए कर ले, बैठ के कर ले, ट्रेन में कर ले, जैसे भी मर्जी कर ले। तो फिर उसके बाद समझ में आया अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है। चलिए और किसी का
रिएक्शन, लेकिन जो सेवाएं में है वो क्रोध भी करते हैं, तो उनका क्या कैसे उनको टैकल दिया जाए?
आप टैकल करने के लिए नहीं आए हो, भगवान ने आपको टैकल करने के लिए नहीं भेजा है, आपको बर्दाश्त करने के लिए भेजा है। आप सहन करो यहाँ पर कि वो उनका अनर्थ है, वो देखेंगे, वो जिसका अनर्थ है वो उसको प्रभावित करेगा, हमें प्रभावित नहीं करेगा वो, जे एक ना एक दिन जो है वो उसके साथ उसका खामियाजा भुगतेगा, हम नहीं भुगतेंगे। तो हमें इस चीज को टॉलरेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारा सही उद्देश्य है कि हम भक्ति करने आए हैं तो हमें यह भी सहना पड़ेगा, क्योंकि आप हिमालय में नहीं बैठे हो कि आपको बर्फ के अंदर बैठे हो, बहुत सर्दी गर्मी सह रहे हो, हमारे लिए यही सहन करना जो है हमारी भक्ति का एक अंग है, तो हमें निश्चित रूप से सहन करना चाहिए चीजें।
हरे कृष्ण, धन्यवाद सर, आपके प्रवचन में बहुत बड़े आपने वर्ड यूज किया धार्मिक सिद्धांत, तो मैं बहुत देर से सोच रहा था कि धार्मिक सिद्धांत और भक्ति सिद्धांत का अंतर क्या है, तो टुवर्ड्स एंड आपने ये जो 9.10 पॉइंट बताया, तो क्या मेरा अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि धर्म के जैसे सिद्धांत बताए आपने जो भक्ति से सिमिलर है, धैर्य क्षमा इंद्रिय निग्रह अस्तेय शौचम और धि और विद्या सत्य अक्रोध और भक्ति के सिद्धांत श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इस दैट सो या इन दोनों के बीच में और भी कुछ अंतर है धार्मिक सिद्धांत और भक्ति के सिद्धांत के?
ऐसा कोई जैसे कि प्रभुपाद बता भी रहे हैं कि कोई बहुत अंतर तो नहीं है इन चीज़ों में, क्योंकि एक 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 भक्त होगा उसको ये सब चीज़ें उसके अंदर स्वाभाविक रूप से, जैसे कई बार हम सुनते भी हैं लेक्चर में भी सुनते हैं, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती हैं। बट क्या है कि भक्ति के सिद्धांत का मतलब है उसको केवल ये देखना है, उसको नाम जप करना है जैसे कि उसने सुना है, और जो धर्म जैसे कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि उसको डीटी वर्शिप करना है, धाम वास करना है, और ये सब जो है ये आध्यात्मिक या भक्ति के सिद्धांतों में। बट धार्मिक सिद्धांतों में जैसे अभी पर जो सहनशील कर सहनना, दूसरों को दुख नहीं देना, अपने मन से वचन से किसी को मुश्किल में नहीं डालना, जैसे हम कई बार क्रोध कर देते हैं, जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे, मान लो मैंने कड़वे वचन बोल दिए किसी को, हो सकता है कि वो कड़वे वचन से व्यक्ति चला जाए, तो ये धार्मिक सिद्धांत में थोड़ा सा मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि थोड़ा अंतर है उसमें, क्योंकि अगर हम, लेकिन ये अनेबल वही बनाता है अगर हम भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो उसके अंदर धार्मिक सिद्धांत निश्चित रूप से जो है वो प्रकट हो जाएगा। मॉरल प्रिंसिपल, धार्मिक सिद्धांत और मॉरल सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसा है, क्योंकि मैं जो मॉरल सिद्धांत के भी जो रूल हैं वो ऑलमोस्ट यही है, सनातन धर्म में भी ऑलमोस्ट यही चीजें आई हैं, हालांकि सनातन धर्म का जो प्रभुपाद ने व्याख्या करी है थोड़ी अलग है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि लॉस्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना, जिससे पिछले वाले उसमें उन्होंने किया था कि उसको माना है, पर धार्मिक सिद्धांत जो है जो कि धर्मशास्त्रों के आधार पर है, भौतिक भक्ति के सिद्धांत जो केवल भक्ति शास्त्र के आधार पर है, जिसमें भक्ति में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, परंतु ये एक दूसरे के पूरक हैं। हरे
दोनों तरफ आपने बताए थे कि ये धार्मिक सिद्धांत जो भी हम सिद्धांत है बिना भक्ति के व्यर्थ हैं, और भक्ति भी जो है श्रुति स्मृति के हिसाब से अगर ना किया जाए तो वो उत्पात मचाती है। तो इसका भी कोई प्रेसिडेंस भी है कि अगर जैसे आपने बताया कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी दिखाई देते हैं, श्रुति स्मृति पुराण के सिद्धांत को जैसे अपेयर होते हैं, या लोग को श्रुति को ज़्यादा मानते हैं स्मृति को नहीं मानते, पुराण को नहीं मानते, तो इसका क्या प्रेसिडेंस है और इसको आप थोड़ा इसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब क्या मतलब जैसे अगर कोई सिद्धांत आया तो पहले किसको माना जाए, श्रुति के सिद्धांत को या स्मृति को या पुराण को, या लोग जैसे हम देखते हैं लोग वेद ज़्यादा को मानते हैं जो बाहर के दूसरी संस्थाएं हैं, वेद को मानते हैं पुराण को नहीं मानते, हम लेकिन पुराण पर ज़्यादा जोर देते हैं वेद से, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन।
एक्चुअली में जो शास्त्रों के हिसाब से तो जो वेद है श्रुति के पुराण को सबसे उच्च माना जाता है, सबसे जो है वो ऊंचे स्तर पर रखा जाता है। जो वेद के वैसे आगे 6 अंग बताए गए हैं कि जो कि शिक्षा व्याकरण श्रुति वो अलग है, फिर जो वेदों की जो 4 तरह की व्याख्या की गई है, खास करके जो दार्शनिक व्याख्या है उपनिषदों की व्याख्या है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे लिए बेस्ट है कि हम उपनिषदों के उस व्याख्या को फॉलो करें, उसको सर्वोच्च मान के करें। अगर हम कर्मकांड से संबंधित या कुछ धार्मिक चीज़ों को कर रहे हैं तो अच्छा है कि हम यजुर्वेद के जो मंत्र यजुर्वेद संहिता है उसको सबसे टॉप मान करके उसको फॉलो करने का प्रयास करें। पर एक सबसे बड़ा सिद्धांत है जो भक्ति में कि जो है वो बड़ा सिद्धांत हमेशा छोटे सिद्धांत को काट देता है। मान लीजिए जैसे मुझे चिकन पॉक्स हो गया या और मैं स्नान करने के लिए मना कर दिया डॉक्टरों ने, तो मुझे जप नहीं करना चाहिए। अब चिकन पॉक्स अगर मैं टॉयलेट भी जा रहा हूँ तो कंटेमिनेट हिसाब में मुझे किसी को जप नहीं करना चाहिए, पर जप तो करना है, तो फिर क्या है ये सिद्धांत को बड़ा वाला सिद्धांत काट देगा, अर्थात तो नाम जप का जो सिद्धांत है उन दोनों सिद्धांतों को काट देगा कि नाम जप सर्वोपरि है और ये जो है वो छोटे लेवल पे है। इसलिए हमेशा उत्तरोत्तर कहा गया कि उत्तरोत्तरम बलियसी, जो ऊपर से ऊपर की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बलवान होती है, कि जो वेद के वाक्य हैं वो ज़्यादा बलवान हैं, क्योंकि वेद के वाक्य स्वयं भगवान के द्वारा हैं। पुराण जो है और नीचे करके कुछ न कुछ समय काल के हिसाब से कुछ न कुछ उसमें किए जाते रहे हैं, बट वेदों में ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं, तो हमें ऊपर के सिद्धांतों को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।